प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम धुनम सोहम सुरति समापतम सकल समान नानिर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 ही उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करू दरू चरण परशीस गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बक्सीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सोखूं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंश मुनि नारद इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूं बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक बरे विकार। तुम दाता दुख बंजना मेरी करो संभारी। बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के हे बिनक पड़ेगी कान। राम रटत कोडी भलो चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारी दर्भलो टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। नर सुन रे मूड गवारा भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गवारा भाई राम भजन तत्सारा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव कालजाल में फंसी हुई अपनी प्यारी आत्माओं को अपने ही पाने और सतलोक जाने की विधि बताते हैं और हम किस स्थान पर आकर के विराजमान हैं, ये कैसा स्थान है या क्या स्थिति है जीव की, तेरी यहां कितने दिन की जो आयु है, क्या क्या तेरे साथ परेशानियां हो रही हैं, ये हमें बताने के लिए परमात्मा आते हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि नर सुन रे मूड गंवारा, हे मानव, तुझे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए मिला था। इस मानव शरीर में तू परमात्मा को याद नहीं करता, जिसके कारण तू अपने मूल उद्देश्य से वंचित रह जाएगा और फिर आपके ऊपर बहुत भयंकर आपत्तियां आएंगी। वो क्या क्या आएंगी वो बताते हैं। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा, कि तेरे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य तत्सार यही है कि परमात्मा की भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, राम की भक्ति कर। अब हमने सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना है, ये निर्णय करना है कि कौन से राम की भक्ति करें जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो और जन्म मृत्यु का ये झंझट समाप्त हो। वो कौन सा राम है? जैसे हम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण और ज्ञानहीन गुरुओं ने हमारे को केवल रामचंद्र पुत्र, श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी जो अयोध्या के राजा थे, उसी को पूर्ण परमात्मा, रामचंद्र जी को पूर्ण परमात्मा बताकर के हमारे हृदय में इतना रंग भर दिया कि जहां भी राम शब्द आता है हमारी सुई दिमाग की श्री रामचंद्र जी के ऊपर पहुंच जाती है और हम उसको राम मान लेते हैं। सबसे पहले हमने राम की परिभाषा से परिचित होना चाहिए। राम एक भक्ति बोधक शब्द है, इसे राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, जैसे चाहे साहब कहो, जैसे हम साहब बोलते हैं अधिकतर कबीर साहब, तो साहब शब्द राम ही समझो। ये एक शक्ति बोधक शब्द है, उपमात्मक शब्द है। जैसे एक स्टेट में छोटे अधिकारी भी साहब कहलाते हैं, जैसे छोटे से हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब, SHO साहब, फिर DSP साहब, फिर SP साहब, फिर IG साहब, फिर DG साहब, फिर गृह मंत्री साहब और फिर मुख्यमंत्री साहब, उसके बाद प्रधानमंत्री साहब, उसके बाद राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब कहलाते हैं, लेकिन इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार थे और विष्णु जी भी साहब हैं, भगवान हैं, राम हैं, शक्ति युक्त हैं। वो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर, जैसे एक स्टेट का एक मंत्री होता है, इतनी पावर है एक ब्रह्मांड में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन मंत्री हैं, इनके पास एक एक विभाग है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु जी, रजगुण विभाग ब्रह्मा जी के पास, जिससे रजोगुण से प्रेरित करके जीवों की उत्पत्ति होती है, कराता है। और ऐसे सतगुण विभाग विष्णु जी के पास है, जो सब आपस में प्रेम मोह ममता संपत्ति में अपनापन, मात पिता भाई बहन के अंदर मोह, स्त्री पुरुष का मोह, संपत्ति के अंदर लगाओ, तो ये जो सतीथी है ये विष्णु, इसका विभाग का, इस विभाग का विष्णु जी मंत्री है, साब है। और यहां संहार करना तमोगुण विभाग का शंकर जी मंत्री है। इनके पिता यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एक ब्रह्मांड के, प्रत्येक ब्रह्मांड में वो मुख्यमंत्री का की भूमिका करता है। कौन? ज्योति निरंजन अर्थात काल रूपी ब्रह्म। 21 ब्रह्मांड का एक विभाग के राम यानी साहब विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी कहो, और इनके ऊपर इनका पिता एक ब्रह्मांड यानी 21 ब्रह्मांड का मालिक है, वो ब्रह्म राम कहलाता है। ब्रह्म कहो, काल ब्रह्म कहो, छर पुरुष वो भी साहब है, वो 21 ब्रह्मांड का साहब है। उसके बाद परब्रह्म जो है अक्षर पुरुष, वो 7 संख ब्रह्मांड का साहब है, राम है, मालिक है, स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर प्रभु, ये असंख्य ब्रह्मांडों का साब है, कुल का मालिक है, जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के भी आते हैं और 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के भी आते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक मंत्री समझो। और ये पूरे ब्रह्मांडों का कुल मालिक स्वामी वो परम अक्षर ब्रह्म, वो भी राम है, उसको भी साब कहते हैं, वो भी राम है। अब उस राम की तरफ संकेत है, नर सुन रे मुहुड़ गवारा, वो राम भजन तत्सारा, नर सुन रे मुहुड़ गवारा, भाई राम भजन तत्सारा, राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम, कौआ खरकी दे धरेगा, नटे नया तक सीरम, कीट पतंग भवंग होते हैं, गिदड़ जम्बुक जुन्नी, बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सुनी, भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हरि पद नहीं जान्या, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण, स्थावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शे, भुगते चारों खानी, बादल छा ओस का पानी, तेरा यो उन्माना, आट पटन कृत्रम सब झूठा, ये रंचक सुख लपटान, नराकार निर्भय निर्बाणी, सुरत निरत निरतावे, आत्म राम अतीत पुरुष को गरीब दास यो पावे। अब क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गुमारा, इस मनुष्य जीवन में केवल राम भजन तत्सारा, तेरे जीवन का जो सार है, मूल उद्देश्य परमात्मा की भक्ति है। अन्यथा क्या बताते हैं कि राम भजन बिन बैल बनेगा, उस राम का भजन कर। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं तुझे जो गीता का ज्ञान दे रहा हूं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, श्लोक नंबर 4 अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 32 में ये स्पष्ट किया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसी को सत्य मानता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करता है, कोई कठिन तप करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और अपनी अपनी पूजाओं को वो मोक्ष यानी पाप नाशक जानकर ही करता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 29 तक है, 30 तक। फिर 32 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण उनकी वाणी में विशेष विस्तृत ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें इन जो साधना जैसी करता है उसके विषय में बताई है, और उसके निर्णय भी दिया है कि साधना जो कोई ऐसा करता है वो गलत है, वो शास्त्र विरुद्ध अनुकूल नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध है। तो उस विस्तार से दिया गया है वो तत्व ज्ञान परमात्मा की वाणी में, उसके मूल ज्ञान में प्रभु पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से अपने उच्चारण वाणी में बताया है। तो उस तत्व, उस ज्ञान को जो भगवान ने आकर बोलिया है चौथे अध्याय, गीता जी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक के बाद 34 के विषय में बताया है कि जो वो ज्ञान 32 में मैंने बताया है कि जो परमात्मा ने आकर वाणी बोली है, अपना ज्ञान दिया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनको कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, उसके बाद तुझे संपूर्ण ज्ञान होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में यही कहा है कि मेरे इस जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं इस पर आश्रित होकर, अर्थात उस तत्वदर्शी संत को ढूंढकर, उसके बाद पता चल जाता है, उसके बाद जिसको ये पता चल गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में और तत्वब्रह्म के विषय में, तत्वब्रह्म, तो वो व्यक्ति फिर यहां की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो केवल जन्म जरा और मरण से छुटकारे की चेष्टा करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, ये दोनों ही सीरियस पॉइंट है इस जीवन के, मनुष्य के जीवन के सबसे खतरनाक बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों इतने भयंकर हैं इनसे प्रत्येक व्यक्ति घबराता है। मृत्यु से तो सीधे डर रहे, लेकिन बुढ़ापा मृत्यु से भी बदतर जीवन है। तो कहते हैं जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, गीता ज्ञान दाता कहता है, और इस पर आश्रित होकर के जो उस तत्वब्रह्म से परिचित हो जान लेता उस तत्वब्रह्म को तत्वदर्शी संत के पास जाकर, और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को फिर वो समझने के बाद वो केवल जरा मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, वो यहां की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जो तत्वब्रह्म को समझ लेता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा किम तत्वब्रह्म हे पुरुषोत्तम, यानी कृष्ण पुरुषोत्तम मान रहा था अर्जुन, तो कहते हे पुरुषोत्तम वो किम तत्वब्रह्म, वो तत्वब्रह्म कौन है, फिर कहां है वो, उस तत्वब्रह्म के बारे में कैसे पता लगे वो कौन है तत्वब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ये थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथ की, गीता जी की, ये श्रीमद् भगवद गीता जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा अध्याय नंबर 4 और इसका श्लोक नंबर 25, ये श्लोक नंबर 25, इसमें कहा क्या कहा है कि कोई किसी प्रकार साधना करता है, कोई किसी प्रकार, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही बलि भांति अनुष्ठान किया करते हैं, अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप अभेद दर्शन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, यानी कोई हवन करता है, कोई कुछ करता है, करते हैं। ये 26 माह आपने देखा हवन किया करते हैं, अन्य योगीजन श्रोत्र यानी कान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी आंख कान बंद करके साधना करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि यानी विषय विकारों से समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है दूसरे यानी अन्य कुछ ऐसे करते हैं, अन्य ऐसे करते हैं। योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अग्नि रूप हवन में अग्नि में हवन क्या करते हैं। कई पुरुष दर्व यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी भंडारे भंडोरे करते हैं, दान दून करते हैं धन से। तप कुछ कितने ही करने वाले, कितने ही तपस्या यज्ञ करने रूप यज्ञ करने वाले कुछ तपस्या करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले कुछ योग साधना करते हैं, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। कहने का भाव ये है कि कुछ तो जैसे ये आपने देखा होगा मुंह का पट्टी बांध कर पैरों में से नंगे घूमते हैं, कहते कठिन अहिंसा यानी हमारे से कोई जीव इंसाना हो जा इस तरह की कठिन साधना करते हैं, और कुछ ऊपर न पैर करके कोई साधना करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई तपस्या करके, इन सभी साधनाओं को अपनी साधनाओं को ये पाप नाशक जानकर ही करते हैं। देखो अब 29-30 में दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे अन्य योगी प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले यानी अल्पाहारी हैं। प्राणायाम प्रायण पुरुष और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनका इसका अर्थ ये है, ये 25 से 30 आपको सुना दिया कि ये सभी साधना जो कर रहे हैं ये अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। अब आगे देखो 32 में क्लियर किया है कि उस परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण जो मूल ज्ञानी है, मूल ज्ञान है, तो ये सभी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे साधना करते हैं, कुछ ऐसे साधना करते हैं, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से बोली गई वाणी में, उस मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में ये सब प्रकार का ज्ञान बताया गया है, उसमें विस्तृत जानकारी है। उस तत्व ज्ञान में उसी के विषय में 34वें श्लोक में कहा है कि उनके पास जा परमात्मा द्वारा उच्चारण ज्ञान को जानते हैं, यानी उस वाणी को जानते हैं। अब देखना अध्याय नंबर 4 का ये 32, अब श्लोक 32 देखो। 31 में तो ऐसे लिखा है कि ऐसे इस सत्साधना करने से मोक्ष कैसे होती है, देखना। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी लिख दी, इन्होंने अज्ञानियों ने अनुवाद करना नहीं आया और अपनी ओछी सोच से गीता के ज्ञान का डंगा कर दिया, कुबाड़ कर रखा सारा, उल्ट फुलट कर दिया। अब ब्रह्मणे मुखे, अब देखना इसमें हम संस्कृत पढ़ेंगे, ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की मुख्य वाणी वाणी में। अब हम ब्रह्मणे का अर्थ ढूंढते हैं, क्या है ब्रह्मणे, इसके विषय में आपको 17वें अध्याय का इन्हीं के द्वारा अनुवादित 17वें अध्याय का 23वां श्लोक इसको स्पष्ट करेगा। यहां ले चलते हैं, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविद समर्थः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ये क्या है, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब ब्रह्मण का ब्रह्मणे का अर्थ यहां देखो, यहां देखो ओम तत् सत ऐसे तीन प्रकार, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्म का। अब ब्रह्मणे का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, ये देखिए सचिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ब्रह्मण का अर्थ हम ब्रह्मण का अर्थ यहां लिख लेते हैं, इसको ठीक करेंगे। ब्रह्मण का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म की, सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की वाणी में, बस सीधी सी बात होगी। यहां ब्रह्मण का अर्थ लिख दो सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। यज्ञवाने अनुष्ठान, बहुत प्रकार के अनुष्ठान उस पूर्ण परमात्मा की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म से काम करते करते करने से, या कर्म जान माने करने से ही होंगे, ये समझो इसका अर्थ ये है। और जान इस प्रकार तत्व से जानकर उन अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी तत्वदर्शी उस परमात्मा के इस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है उसके द्वारा साधना करने से तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में लिखा है 34 में, 33 में क्या कहा है, यह अध्याय नंबर 4 का श्लोक 33 में कहा है कि हे प्रणतम अर्जुन, प्रणतप अर्जुन, दर्व में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। कि जैसे कोई धन से भंडारे करता है, कोई कंबल बांट देता है, कोई गौ दान कर देता है, इस का अर्थ ये है कि वो अपने मनमुखी कोई कैसा दान करता है, कोई कैसे दान कर रहा है, कहते हैं उस दर्व में ज्ञान की यज्ञ की अपेक्षा, जो धन के द्वारा अनुष्ठान योग करते हो तुम उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले ज्ञान समझ और फिर दान धर्म कर। वैसे मनमर्जी से कितना भंडारा करवा दिया, कितना कुछ दान कर दिया, वो भी धर्म है लेकिन वो सुचारू नहीं है, वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि दर्व यज्ञ, दर्व माने जो धन से होने वाला अनुष्ठान है, क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान समझ पहले और फिर धर्म कर। जैसे हम अपने गांव की तरफ, घर की तरफ चलते हैं तो पहले निर्णय करें कि हमारा रास्ता कौन है, वैसे किसी तरफ स्पीड से चल पड़ेंगे उधर रास्ता हमारा गांव के घर की तरफ जा नहीं रहा, वो रास्ता तो व्यर्थ है। पहले जानकारी प्राप्त करके तेरे घर को गांव को जाने वाला रास्ता कौन सा, फिर चल स्पीड से, फिर चल उस तरीके से उसी। तो इसका अर्थ यह है कि ज्ञान यज्ञ से, धर्म दर्व यज्ञ से, धन से होने वाले अनुष्ठान दर्व यज्ञ कहलाते हैं, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। देखो ये चौथे जगह 33वां श्लोक है, ये परंतम अर्जुन दर्व में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। आगे देखो ये ज्ञान तत्व ज्ञान की तरफ संकेत है, जो चौथे जाएंगे 32वें श्लोक में कहा, उसी के विषय में कहा है 34वें, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, ये चौथा अध्याय श्लोक 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कौन से ज्ञान को, जो चौथे अध्याय के इस 32वें में कहा है, ये चौथे अध्याय के जो 32वें में कहा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सची, ये ब्रह्मण का अर्थ गलत है, सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू मन इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। कर्म जान माने काम से करने से पूरे होते हैं, करने पड़ेंगे वतन जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इसकी विषय बताया है कि सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात पूर्ण परमात्मा की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को से होते हैं। तो यहां लिखा है उस तत्व ज्ञान को तू, जो ज्ञान है वो दर्व ज्ञान, दर्व यज्ञ से भी श्रेष्ठ है, उस ज्ञान को, उस परमात्मा की वाणी वाले ज्ञान को। इसका क्या कहना चाहा है, गीता जी में क्या ज्ञान दिया जा रहा है कि जो सचिदानंद घन परमात्मा ने अपने मुखारविंद से अपनी वाणी में जो ज्ञान कहा है उसमें बहुत विस्तार से ज्ञान दिया, सच्चा दिया है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। अब कबीर परमेश्वर की वाणी को ये दास समझा सकता है, इस पृथ्वी पर दूसरा समझाड़िया नहीं है। और इस ये तत्वदर्शी संत परमात्मा ही बुद्धि देता है, पूर्ण ब्रह्म वो अपनी शक्ति देता है और उस दास से अपने इस निर्णायक ज्ञान को उच्चारण करवाता है, जिसके कारण जनसाधारण परमात्मा को पहचान सकता है। अन्यथा इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों और गुरुओं ने बठा बठा रखा है, उबाई का ज्ञान गथ रखा है, जनसाधारण उनको परम संत परम ज्ञानी और महर्षि जानकर उनके अनुयायी बन चुके हैं और वो सब ज्ञान को ऊट पटांग बना करके चले गए। अब उस सारे बिगड़े हुए ढांचे को सेट करना पड़ेगा, इसलिए दास को कठिनता आ रही है कि उनको हम महर्षि मान बैठे, उनको हम मंडलेश्वर मान बैठे, जगत गुरु मान बैठे, तत्वदर्शी संत मान बैठे, जिन्हें कह कह का भी ना पता था। पहले तो उन जैसे हम किसी संत या ऋषि पर आश्रित हैं, उनके उसके ज्ञान की को सामने तोलना पड़ेगा तत्व ज्ञान से, तभी हम समझ सकते हैं कि जिसके विषय में ये दास कह रहा है कि ये महर्षि नहीं था, इसने कह कह का भी पता नहीं था। यदि मैं इतने शब्द बोलकर छोड़ दूं तो कोई नहीं माने मेरी बात ने। और मैं साथ में ये दास क्या करता है कि तत्व ज्ञान रूपी तराजू से और उन नकली संतों ऋषियों और महर्षियों और परम धनियों की वाणी को दिखा देता हूं, तुलना कर देता हूं, जिसके समक्ष वो कति उस वेद के विरुद्ध होती हैं, जिससे जनता आंखों देख करके उन पहले तो नकली जिनको महर्षि मान रहे थे, जिनको जगत गुरु मान रहे थे, परम धनी मान रहे थे, उनसे मन हटेगा कि तो डांगर थे, इन्हें क्या है का बिना पता था, कैसा बट्ठा बैठा गए। तो इसलिए दिखाना पड़ता है कि आपका उनसे हृदय हटे और मालिक में लागे। और कोई उद्देश्य नहीं हमारा किसी को बुरा मैं कहता ना, किसी को गुंडा बदमाश कहता ना, किसी ने चोर ठग कहता ना, इतना जरूर कहता है उनको ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी थे, आध्यात्मिक ज्ञान कति नहीं था। और जब हमें पता चलेगा कि जिसकी हम उंगली पकड़े जा रहे वो अंधा है और ना जाने कि ठोकेगा ठाक है, तो तब हम पता लगेगा कि अंधा है और इससे वापस छोटो इसकी उंगली छोड़ो और आंखों वाले की उंगली पकड़ो जो तुम्हें सत्य मार्ग पर ले चले, इतनी सी बात। तो अब यही बताया जा रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्व वो जो परमात्मा की वाणी कबीर वाणी में जो लिखा है उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो और उनको विनम्रता से पूछोगे तो वो सच्चाई बताओगे, ना तो टाल मटोल कर देंगे, क्योंकि ऐसा निर्मल ज्ञान है बकवादी को नहीं बताया जा सकता। अब क्या कह रहे हैं, अब चौथा अध्याय वही पवित्र गीता जी चौथा अध्याय, उस ज्ञान को जो परमात्मा ने अपनी वाणी में खुद आकर बोला है वो उस तत्व ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उसी से संबंधित ये ज्ञान है, वो बताया है कि तू मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जो मैं तुझे बता रहा हूं, इसने सच्चे ढंग तमान समझ और इसके ऊपर अमल कर, असर इसका अनुसरण कर जो मैं बता रहा हूं। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29 है, जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने उसे छुटकारा पाने के लिए, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, माम माने मेरे इस ज्ञान के जो मैं ज्ञान तुझे दे रहा हूं, आश्रित यतंती ये इस ज्ञान के आश्रित होकर जो प्रयत्न करते हैं जरा मरण मोक्ष से, वो कौन करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को जानते हैं, कर्शनम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वह सभी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्मों को मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्मों से अध्यात्म और कर्मों से परिचित होते हैं जो उस ब्रह्म की जो उस क्या है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती, ये जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म से तत्ब्रह्म और संपूर्ण जातम कर्म से संपूर्ण कर्म से और संपूर्ण जातम मार्ग से ज्ञान से वो जानकार होते हैं, वो विदित होते हैं। जो जरामरण मोक्ष से ही प्रयत्न करते हैं छूटने के लिए वो पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, उस परमात्मा से परिचित होते हैं और उस तत्व ज्ञान से भी परिचित हैं जो केवल जन्म मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ की ना सिद्धि चाहते ना राज चाहते ना कोई बकवाद चाहते, वो उनको वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं जो मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर के तत्वदर्शी संतों को खोज लेते हैं। अब इनके द्वारा अनुवाद देखना इसी का 29 का चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष वे साधक तत् ब्रह्म, देखो तत् उस ब्रह्म, यहां देखो तत् ब्रह्म उस ब्रह्म, ब्रह्मन परमात्मा, उस परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, सचिदानंद घन परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को यानी अध्यात्मिक पूरे ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर और जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं यानी वो नहीं मांगते कुछ वस्तु के, हे भगवान ये पांडा छूटे जन्म मृत्यु तो है इसे बुढ़े बुढ़ापे तो है, कहते वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यो पाप यो कर्म नहीं करना चाहिए इससे ये पाप होगा, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए ये पाप होगा इससे ये हानि होगी ऐसा दुख होगा, यानी वो डरते हैं, वो भगवान के ज्ञान से परिचित हैं, उन कर्मों से परिचित हैं, जो कर्म तू करने जा रहा तुझे कितना दुखदायी होगा, तो वो ऐसे पाप नहीं करते और वो सभी पापों से सभी कर्मों से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से और उस परमात्मा से परिचित हैं जो केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। समझ गए इतना सा ये इसका ये अर्थ है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा फिर किम है वो, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये के है वो परमात्मा कौन है, तत्ब्रह्म कौन है और क्या क्या यू अध्यात्म कर्म है क्या अधिभूत है ये मुझे सारा बता। ये देखिएगा आपने ये 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखा, इसमें 30 ही श्लोक है, ये 30वां यहां समाप्त हो जाता है। ये जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझको अंतकाल में बजते हैं वे युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। अब इसका क्या अर्थ है 29वें का 7वें जाएगा 30वें श्लोक का ये भावार्थ है कि जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तत्वदर्शी संत नहीं मिला वो केवल मुझे ही सर्वस्वा मानते हैं और वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। दो भगवानों के बारे में गीता जी में नारा नारा ज्ञान है कि जो केवल जिनको तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं हुआ वो मुझे ही पूर्ण परमात्मा मानते हैं सर्वस्वा मानते हैं मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। तो अब 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, ये अथ अष्टमो अध्याय प्रथम मंत्र, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं आदि आदि। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने तीसरे श्लोक में दिया है, 8वें अध्याय के ये तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है कि अक्षर ब्रह्म परमम वह परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम वो परम अक्षर ब्रह्म है। कौन सा, जो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा है, ये प्रथम श्लोक में पूछा है कि वह पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, इसके बारे में यहां उत्तर दिया है कि परम ये तीसरे मंत्र श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसके विषय में ही क्योंकि ये जो वाणी है कबीर परमेश्वर द्वारा उच्चारित है यानी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है गरीबदास जी, संत गरीबदास जी महाराज के अंतःकरण में मालिक ने फीड कर दिया, जैसे मोबाइल टू मोबाइल मैसेज, मोबाइल टू मोबाइल फिल्म फिक्स हो जाती हैं, तो ऐसे ही परमात्मा ने अपना ज्ञान इस संत गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद यही वाणी गरीबदास जी महाराज ने बोली है, तो वो क्या बता रहे हैं, नर सुन रे मूड गवारा भाई राम भजन तत्सारा। कौन सा राम? वो ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, उसकी भक्ति से ही छुटकारा होगा, जन्म मृत्यु मिटेगी, अन्यथा जो साधना तू करता है उससे जैसी क्रिया करेगा वैसा लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु अर्थात ये कर्म का दंड समाप्त नहीं हो पाओगा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम, कौवा खरकी दे धरेगा, मेटे नया तकसीरम। पुण्यात्मा क्या बताते हैं कि यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, उस राम पूर्ण परमात्मा यानी उस राम की, अब हमने वैसे तो राम शब्द ही काफी है, क्योंकि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं कोड वर्डों को समझने लग जाते हैं विद्यार्थी, तो अब जहां भी हम राम शब्द कहें कि उस भजन करो, राम भजन तत्सारा, अब कौन से राम की तरफ हम संकेत कर रहे हैं, उस पूर्ण राम की तरफ, तत्ब्रह्म की तरफ, कबीर परमेश्वर की तरफ। उसके भजन बिना, उसकी भक्ति के बिना हम अन्य साधना भी करते हैं, वो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल होगा, पुण्यों का फल भी मिलेगा पापों का भी मिलेगा। पुण्य जैसे होंगे हमें तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, कोई देव उपाधि प्राप्त कर लेंगे, उसके उपरांत फिर हम नरक में भी जाएंगे पाप कर्मों का भोग भोगने के लिए, और पाप कर्मों को भोग करके उसके बाद कुछ ऐसे संस्कार, ऐसे कर्म होते हैं जो 84 लाख योनियों, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाकर ही भोगने पड़ेंगे, वो भी भोगने पड़ेंगे। उसके बाद फिर मनुष्य जीवन मिलता है, कुछ ऐसे पुण्य आपके उस एवरेज से औसत से रख लिए जाते हैं, आपके पुण्य और पापों की एवरेज से कुछ पुण्य शेष रख लिए जाते हैं, कुछ पाप शेष रख लिए जाते हैं, जो आपको मानव शरीर में प्राप्त होते हैं। फिर मानव शरीर प्राप्त होता है और मानव शरीर के अंदर आपको फिर वो पुण्य और पाप, सुख और दुख फिर प्राप्त होते हैं। ये तो है पूर्ण परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त, चाहे आप ब्रह्म की साधना करो, चाहे परब्रह्म की करो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की करो या कोई अन्य देव की करते हो, इनसे जन्म और मृत्यु और जैसा कर्म किया वो दोनों फल मिलेंगे। एकमात्र पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, कबीर प्रभु है, वो पूर्ण ब्रह्म है, तत् ब्रह्म है, सचिदानंद घन परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी साधना से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसकी भक्ति करने से पाप कर्म नाश हो जाते हैं, और अन्य किसी राम की, किसी साब की, किसी भगवान की भक्ति से पाप नहीं कटते, और दुख दूर होंगे पापों का के कट जाने से। दुख होता है पाप से, और पाप हमारा कटेगा, नष्ट होगा, तो हमारा दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे पैर में कांटा लगाओ, अब कांटे से पीड़ा है, और कांटा निकले बिना पीड़ा अंत नहीं हो सकती, तो कांटा निकलेगा तो पीड़ा समाप्त होगी। और कोई कहे कि कांटा तो लगा रहेगा, ये निकल नहीं सकता, और तू भक्ति कर, आगे कांटा नहीं लगेगा, जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, पहले कांटा निकले और फिर जूता, फिर उसको सलाह दे के भाई जूते पहन के रखना, नहीं तो फिर कांटा लग जाएगा। तो कर्मों रूपी कांटों से जो पीड़ित है परमेश्वर के दरबार में आते वो सुखी हो जाते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि ये पाप नहीं करना, ये ऐसे जुल्म नहीं करना, मिलावट नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, किसी झूठ नहीं बोलना, किसी की सताना नहीं, ये पाप रूपी कांटों के को फिर ग्रहण नहीं करना। तो फिर वो प्राणी इस डर से मर्यादा निभाता है, परमात्मा से डरता है और भक्ति रूपी जूता पहन लेता है कि कहीं फिर काटे ना लग जाए। और अज्ञानियों ने, अन्य संतों ने, ऋषियों ने, आप किसी की थ्योरी उठा के देख लो, कहते हैं पाप तो भोगने पड़ेंगे, प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अरे भले पुरुष हो, भगवान को किस लिए तलाश रहे हैं, किस लिए ढूंढ रहे हैं, किस लिए खोज रहे हैं? इसलिए खोज रहे हैं कि हमें सुख दे। पाप और अज्ञानता में हमने पाप करके दुख तो इकट्ठे कर ही रखे, कांटे हमारे लग चुके हैं, वो न कोई निकालने वाला मिला है जब वह बात बने, और फिर हम डर के जूते पहनाएंगे कि फिर कांटे ना लग जाए, बिल्कुल भी ना निकाले जूता जिसका एक बार अच्छा कांटा लग जाए और उसको पीड़ा का पता लग जाए। तो भक्ति भी वही प्राणी ज्यादा करते हैं जो पहले दुखी होकर के फिर भगवान की कृपा से सुखी होंगे, वो दुख उनके लिए वरदान बन जाएगा क्योंकि वो भगवान से दूर नहीं हो सकते। अब उन अज्ञानियों की थ्योरी आपको दिखाते हैं जो कहते हैं पाप नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते। अरे तेरा गजब हो, यो तुम मनुष्य थे या शैतान थे? भगवान की, जैसे डॉक्टर के पास कोई जाता है, वैद्य के पास, और उससे कहे कि मेरे पेट में दर्द है, और डॉक्टर ये कहे भी पेट का दर्द दवाई से ठीक नहीं हो सकता, तो वो क्या दवाई लेगा उसकी? और कोई नहीं होगा, पहलवान बन जाएगा तो पेट का दर्द तो नष्ट नहीं, समाप्त नहीं हो सकता। क्या वो, क्या उसकी ये राय सही है? क्या वो वैद्य हो सकता है? नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो तो उल्लू आदमी है जो बकवाद करने का पेट दवाई खाने से दर्द कष्ट रोग निवारण नहीं हो सकता। कोई साबुन के बारे में बकवाद कर रहा है, साबुन ले लो, साबुन ले लो, और फिर नो क्या साबुन से मैल थोड़ा ही कटता है, तो साबुन ने शर्मा मारेगा जो मैल ना कटेगा, तो साबुन लेगा कौन उसके? ऐसी थ्योरी दिखाता हूं आपको महर्षि दानंद जी की, इनको महर्षि की पदवी दे दी, वेदों का ज्ञाता बताया, जिसने वेदों के बारे में कह खेगा भी पता नहीं वो तो महर्षि की पदवी को विराजमान है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये देखो ये स्वामी दानंद जी का चित्र है, और ऐसे लगते हैं जैसे कति भगवान से मिल लिए ये, और कितने अकड़कर मानो इस तरह के बनावटी पोजों से प्रभावित होकर श्रद्धालु इन नकलियों के पीछे लागे। ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती, संवत 1881 इनका जन्म हुआ, और 1940-59 वर्ष में इनकी मृत्यु होगी। अब ये देखिएगा अथ है, यानी प्रारंभ होता है यहां से, अथ है सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण है। ओहो लेखक महर्षि जी लिख रहा सबसे पहले कि वेद आदि भिन्न भिन्न प्रकार के सद शास्त्रों के प्रमाणों से संविन्नता यानी इसमें सहयोग से परम श्रीमत परमहंस परिवराजकार आचार्य महर्षि, यहां से उपमा शुरू करी है महर्षि दानंद के ऊपर, श्रीमत परमहंस परिवर्जक का आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये भी अब इसकी उपमा पढ़ते पढ़ता रहे आदमी, इतनी बड़ी लिख रखी है इस महर्षि के लिए, और लिखा है इसने कि वेद आदि विविध प्रकार के सद शास्त्रों के आधार से ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? श्रीमत परमहंस परिवर्जा काचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक है वैदिक गति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। यह देखना प्रकाशक वैदिक यति मंडल दीनानगर, दानंद मठ दीनानगर पंजाब से, कहां से छपा है ये? स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम ₹25। ये कहां से छुपा है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये छपया आचार्य प्रिंटिंग प्रेस से, और छपवाया प्रकाशक छपवाया न है वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर वालों ने। अच्छा इसमें देखिएगा सातवें समोल्लास में, ये सप्तम समुलास आरंभ है। यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तू मानते हो या नहीं? उत्तर महर्षि कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब देखो, अब ये क्या कहते हैं, देखो एक जो ज्ञान, एक इनका जो सिद्धांत है, एक ही इनकी टिप्पणी अपने तीनों सिद्धांतों को फेल करेगी। वो दिखाता हूं पहले कौन कौन से हैं। एक तो ये कहते हैं भगवान निराकार है, और दूसरा ये कहते हैं कि परमात्मा अनेक नहीं है, भगवान एक का है, और उस एक को ये ब्रह्म कहते हैं। प्रथम समुल्लास प्रश्न नंबर 15 पे यहां लिखा है कि रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर का नाम ब्रह्म है, और यहां ये कह रहे हैं स्वामी जी सातवें समुल्लास में के वेद में पूछने वाला प्रश्न कर रहा है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर माने ब्रह्म, क्योंकि ये ब्रह्म को ईश्वर कह रहा है, ब्रह्म अनेक है, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक, ईश्वर माने ब्रह्म, क्योंकि ये स्वयं कह रहे हैं प्रथम समुल्लास के 15 पृष्ठ पर, ये खुद कह रहे हैं कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर, इन्हीं की थ्योरी में, यानी एक अनेक ईश्वर नहीं है, अर्थात अनेक ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म है, इनका कहने का ये भाव है यहां पर, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, याद रखना। 151 पृष्ठ पे ही है। अब 153 पर आपको फिर दिखाते हैं, 54 पे सप्तम समुल्लास प्रश्न नंबर 154 पर किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है या निराकार, ब्रह्म, ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं, उसने उत्तर दिया स्वामी दयानंद जी ने कि निराकार। अच्छा आगे देखो, 154 पर 155 पर फेल कर रहा है, 155 पर ही भूल गया, पीछे क्या कहा था मैंने, 54 पे 154 पर क्या लिखा है प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए, क्योंकि स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर, क्या प्रश्नकर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है कि तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी दे रहे हैं, उनके करने का अन्य फल है, फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता के पूछता है क्या है, स्वामी जी ने उत्तर दिया है, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे तेरा गजब है, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। यहां कह रहा है परमात्मा निराकार है 154 पृष्ठ पे, और 151 पे कह रहा है एक ब्रह्म नहीं, अनेक ब्रह्म नहीं है, सप्तम समुल्लास के प्रारंभ में कि नहीं मानते, वेदों में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं मानते, ईश्वर माने ब्रह्म, क्योंकि स्वयं ईश्वर के एक ही ब्रह्म है, ईश्वर का नाम ब्रह्म है। कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि जिससे अनेक ईश्वर यानी अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है, अर्थात ब्रह्म एक है, और ये खुद कह रहा है परब्रह्म से मेल। अरे वाह। अब 154 पृष्ठ पर सप्तम समुल्लास में ही, सातवें समुल्लास में ही कह रहा है उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे महर्षि जय हो। इनको मैं ऋषि कहें कि एक पृष्ठ एक ही समोल्लास में तीन पृष्ठा में अपनी सारी थ्योरी लिख भी ली और खंडन खंडन भी कर दिया। अब जैसे एक दादा एक परदादा दो हो गए, नेक्स्ट ब्रह्म परब्रह्म दो सिद्ध हो गए, दो दो ईश्वर सिद्ध कर दिए स्वयं ही परब्रह्म से मेल, या कहते साधना निराकार भगवान है और फिर उससे मिलन हो जाए, उस एक ब्रह्म को छोड़ उससे दूसरे ब्रह्म परब्रह्म से दूसरे ब्रह्म से भी हो जा, दो ब्रह्म दो ईश्वर आप सिद्ध कर दिए और फिर कहता है उससे मिलन हो जावे साक्षात्कार हो जावे। साक्षात्कार निराकार से होगा क्या? क्योंकि परमात्मा को ये निराकार मानते हैं और परमात्मा प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान भी मानते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ अभेद है क्योंकि वो निराकार होने से सर्वव्यापक होने से सबके साथ मिला हुआ, फिर उसे मिलन के होगा उपासना से, उसका साक्षात्कार निराकार का होगा क्या? साक्षात सामने उस साकार वस्तु से मिलना उसको साक्षात्कार कहते हैं। इसका ये स्वयं भी इसी में प्रमाण देते हैं।